ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को प्रतिदिन मुरली के अंदर ये जागृति दी है कि बच्चे तुम कर्मयोगी हो। बाबा ने कभी भी हम बच्चों को कर्म सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं दी, परंतु हमेशा जब भी कॉन्ट्रास्ट बताया सन्यासियों और ब्राह्मण बच्चों के बीच का, तो यही कहा कि वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, कर्म सन्यासी है, लेकिन तुम बच्चों को सदा कर्म योगी बनना है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कौन सी? कर्म करना, जो कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी प्राणी मात्र मनुष्य की तरह सोच समझ करके कर्म करे, ये विशेषता उनके पास नहीं है, सिर्फ हम लोगों के पास है। साथ ही जैसे बताया कि हम सभी राजयोगी हैं, है ना? अर्थात के बाबा आकर के राजयोग सिखा करके हमें योगी भी बनाते हैं। तो जितना ईश्वर से प्यार उतना योगी जीवन, लेकिन कर्म योगी अर्थात के हम परिवार में रहते हैं। ये ब्राह्मण परिवार में भी जब आपस में मिलकर के रहते हैं, ये हमें कर्मयोगी बनाता। तो ईश्वर से प्यार हमें योगी बनाता, लेकिन ब्राह्मण परिवार से प्यार हमें कर्मयोगी बनाता। लेकिन कर्मयोगी जीवन शैली, आज जो विषय है कर्मयोगी जीवन शैली, किसको कहा जाता है? तो प्रतिदिन बाबा की साकार मुरलियों में जो बात आई है कि बच्चे तुम जब भी कर्म करो देही अभिमानी होकर कर्म करो, ये अभ्यास को बढ़ाओ। और जब बाबा देही अभिमानी होकर के कर्म करने के लिए कहते हैं, तो देही अभिमानी माना रटना तो नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटना तो है नहीं कर्म करते समय। तो देही अभिमानी मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना। कैसे करेंगे आत्मिक स्थिति में? तभी मैंने कहा क्या रटना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हैं? जो गुण हमारे हैं वो हमारे कर्म में आने चाहिए। हाँ, देह अलग है ये महसूस करना, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो देही अभिमानी बन करके कर्म करना माना आत्मा के सातों गुण स्वरूप होकर के कर्म में आना। अर्थात वो गुणों की ऊर्जा हर कर्म में प्रवाहित होनी चाहिए कि जो भी हम कर्म करें, शांति, प्रेम, आनंद, सुख स्वरूप होकर के कर्म करें, तो उसको कहते हैं कि कर्म योगी जीवन। अगर व्यक्ति कर्म कर रहा है और अंदर में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, अगर कर्म कर रहा है लेकिन गुस्से में कर्म कर रहा है, है ना? कर्म कर रहा है लेकिन खुशी नहीं, दुखी होकर के कर्म कर रहा है, तो उसको देही अभिमानी बन करके कर्म नहीं कहेंगे। दुनिया के अंदर हम ये स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य आत्मा जो कर्म करता है, देह अभिमान के वश कर्म करता है, और इसीलिए वो दुख अशांति का अनुभव हर कर्म करते हुए महसूस करते हैं। तब उनका कर्म बंधन और बढ़ता जाता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी जीवन बनाने के लिए कहा, अर्थात हर कर्म में आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा इस तरह से प्रवाहित हो कि जो कर्म करे खुशी से करे, है ना। बाबा कई बार कहते हैं आप झाड़ू लगा रहे हो लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर खुशी हो, है ना। खुशी से कर्म करें, और जब खुशी से करते हैं तो वहां देह अभिमान नहीं होता है, तो वो कर्म हमें एक आनंद की अनुभूति कराता है। जो कर्म कर रहे हैं प्रेम से हम कर्म करें तो कर्म बंधन नहीं बनता है, वो कर्म हमें जैसे जमा का खाता बढ़ाने वाला महसूस हो कि उसमें जैसे आत्मा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव कर रही है, तो बंधन नहीं है, प्राप्ति का अनुभव है। उसको कहा जाता है देही अभिमानी होकर के कर्म करना, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव प्रदान करता है। इसलिए कहा कि हम खाली राजयोगी नहीं है कि बैठ करके सारा दिन योग लगाए, लेकिन हम कर्म योगी है। हर कर्म करते हुए अनेकों को साक्षात्कार हो, जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने भी अंत तक कर्म किया, है ना, अंत घड़ी तक कर्म किया, लेकिन हमेशा लाइट होकर के कर्म किया, देही अभिमानी होकर कर्म किया, तो बाबा का हर कर्म प्रेरणा देने वाला बन गया, दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा देने वाला। बाबा किसी को कहते नहीं थे, लेकिन बाबा मम्मा जाकर के जब अनाज सफाई करने बैठ जाते थे, यही प्रेरणा सब बच्चों को देते, हर एक अपना अपना काम समेट करके फटाफट करके बैठ जाते थे। तो कर्म साधारण हो लेकिन स्थिति बहुत ऊंची हो। स्थिति में जैसे हर समय नित्य एक ऐसी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती हो कि जो भी इंसान उसके सानिध्य में आए वो भी उस सुख की अनुभूति करे, उसको कहा जाता है कर्म योगी जीवन। तो कितनी अच्छी जीवन जीने की कला सिखा दी। कर्म वही है लेकिन अब मानसिकता बदल गई। जब मानसिकता हमारी बदल जाती है तो हमारा हर कर्म क्या हो जाता है, दूसरों को इंस्पिरेशन देने वाला, प्रेरणा देने वाला कर्म हो जाता है। साथ ही जिस कर्म के अंदर थकावट की अनुभूति नहीं है, लेकिन वो कर्म क्योंकि बांधता नहीं है हमें, तो थकावट कहां से होगी, लाइटनेस है। जो भी हमारे संबंध में आते हैं वो उसको भी हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो भाव यही कि कर्म योगी होकर के कर्म करना, माना अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति चारों में ही परिवर्तन आ जाए, आत्मिक भाव आ जाए और आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा नित्य प्रवाहित होती रहे। यह है कर्म योगी जीवन शैली। बाबा ने हम बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई। कर्म को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ को नहीं छोड़ना है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, जिम्मेवारियों को नहीं छोड़ना है, रहना वही है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। तो खुशी हो रही है ना, हर कर्म करते हुए खुशी होती है और खुशी खुशी कर्म करते हैं। दूसरी बात, कर्म योगी बनकर कर्म करना माना कर्मेंद्रिय को अधीन करके कर्म करना, कर्मेंद्रिय के अधीन होकर नहीं, लेकिन कर्मेंद्रिय को अपने वश में रखते हुए कर्म करना। ये नहीं कर्म कर रहे थे आंखें हमें मन को भटका दे, जब मन ही भटक जाए तो वो कर्म की क्वालिटी क्या होगी, वो कर्म की क्वालिटी में गलतियां जरूर होगी, नुकसान जरूर होगा। इसीलिए जब एकाग्रता के साथ अपनी हर कर्मेंद्रिय अपने अधीन होकर के हम कर्म करते हैं तो मन भटकता नहीं, मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि अगर मन विचलित हुआ तो इंद्रियां भी हमारे वश में रहने वाली नहीं है, और इंद्रियां भी विचलित हो गई तो भी मन कहां कहां भटकता रहेगा। जब मन भटक रहा है, इंद्रियां विचलित है, तो वो कर्म की क्वालिटी क्या होगी, उसमें नुकसान होगा, हाथ से कुछ गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि कर्म योगी जीवन शैली माना कर्मेंद्रिया अधीन हो, हमारे कंट्रोल में हो। जब कर्मेंद्रिया कंट्रोल में है तो जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म सेवा भाव का हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ भाव नहीं है। तो स्वार्थ भाव रहित और सेवा भाव युक्त कर्म, ये हमारे कर्मयोगी जीवन है, जहां हर कर्म एक प्रकार से सेवा है। चाहे आप परिवार में रह रहे हैं, परिवार में खाना बना रहे हो, तो भी क्या कहेंगे, सेवा भाव से है, ये समझ करके कर रहे हैं बाबा ने ये जिम्मेवारी मुझे दी, इस जिम्मेवारी को मुझे अच्छे से अच्छी तरह से निभाना है, है ना। दुनिया में लोग कर रहे हैं, गृहस्थी चला रहे, काम उतारने वाली बात, सोचते हैं जल्दी जल्दी कर लो और बस उतार दो काम और फिर अपना कोई एंटरटेनमेंट करो, या और कहीं जाना है, शॉपिंग जाना है, इधर जाना है, उधर जाना, वो करो। बाबा ने हमको ये नहीं सिखाया, बाबा ने कहा हर कर्म जिम्मेवारी निभाओ, तो भी उस समय यही समझो कि ये परिवार के सदस्य जो है ये भी बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है, और उसकी सेवा अर्थ उसको अच्छा क्वालिटी का भोजन मिले, अच्छे क्वालिटी का हर मिले, भोजन प्राप्त हो, वैसा घर हो जहां पर वाइब्रेशन अच्छे हो, तो हर कोई को सुकून मिले, ये जीवन शैली हो गई, है ना। तो पहले जीवन शैली कैसी थी और अब हमारी जीवन शैली कैसे हो गई। पहले कितने बजे उठते थे और आज कितने बजे उठ करके लोग उठे, उसके पहले तो हमारा आधा से ऊपर काम हो जाता है, और कितना प्यार से शांति से काम हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, और हमारे पास पूर्ण समय भी है उसके बाद भी सेवा करने का, है ना। तो इसलिए कहा दुनिया के मनुष्य आत्माओं के कर्म स्वार्थ युक्त होते हैं और हमारे सेवा युक्त होते, ये अंतर है दोनों जीवन शैली में, है वही गृहस्थ में, लेकिन कितना सुंदर सारा गृहस्थ व्यवहार हमारा हो जाता है। उस गृहस्थ में स्वच्छता, जहां कर्म योगी होकर के कर्म करते हैं तो स्वच्छता, बाबा का घर है ये भी, और बाबा को स्वच्छता पसंद है तो कितना साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे। और पहले कपड़े कहां पड़े होते थे, ये कहां पड़ा होता था, सारा घर कैसा होता था, एकदम जैसे बिखरा बिखरा, और उसको समेटने का टाइम नहीं लोगों के पास, क्या करें, एक समेटो दूसरा बिखार देते हैं। लेकिन बाबा के बनने के बाद जब बाबा ने हमें कर्मयोगी बनाया तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके सारा घर साफ स्वच्छ करके हम मंदिर जैसा बनाते हैं, जहां हमारा घर भी एक मंदिर है। लोग यही महसूस करते, घर में आते हैं तो कहते हैं आपके घर में कितनी स्वच्छता, कितनी शांति, कितना अच्छा लगता, कहते कि नहीं कहते। और पहले वही घर क्या था, कबाड़ खाना था जैसे, है ना, और आज वही मंदिर हो गया जहां खुशबू है। सुबह सुबह बाबा को याद करने बैठते, अगरबत्ती जलाते तो सारा खुशबू नहीं हो जाता है, वातावरण के अंदर भी कितनी सुंदर खुशबू फैल जाती है, प्रेम भाव की खुशबू फैल जाती है। ये है कर्म योगी जीवन शैली। तो पहले कर्म कर्मेंद्रिय के अधीन होकर करते थे, अब मालिक बनकर कर्म करते हैं। पहले स्वार्थ युक्त कर्म होते थे, अब सेवा भाव से कर्म करते हैं। और जहां सेवा भाव है तो जरूर निर्माणता है, निर्माणता है तो घर के अंदर भी क्रिएटिविटी है, नव निर्माण कर लेते हैं कुछ ना कुछ सुंदर तरीके से। टाइम है ना आपके पास, दुनिया के लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है, तो कहां से नव निर्माण करेंगे, रचनात्मकता लाएंगे। और बाबा के बच्चों का घर देखो, हर एक घर इतना सुंदर है ना। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि देखो कर्म योगी जीवन शैली कितनी उच्च है, श्रेष्ठ है, सुखदायी है। तीसरी बात, कर्मयोगी जीवन शैली माना जहां हम बाबा के श्रीमत का हाथ पकड़ करके हर कर्म करते हैं। और बाबा के श्रीमत का हाथ कौन सा होता है, मर्यादा सिखाता है हमें जीवन के अंदर, मर्यादा से कैसे रहना है, मर्यादा से कैसे चलना है और मर्यादा से कैसे व्यवहार करना है। दुनिया के अंदर कोई मर्यादा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, और हमारा अमृत वेले से लेकर उठने से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म मर्यादा युक्त, क्योंकि बाबा का श्रीमत का हाथ पकड़ा हुआ है। और इसीलिए हर कर्म मैं जहां श्रीमत समाई हुई है, मर्यादा समय, तो वो कर्म का बल कितना श्रेष्ठ है, श्रीमत हमें कितनी शक्ति प्रदान करता है। तो हमारा कर्म बल क्या करता है, श्रेष्ठ कर्म की ओर हमें आगे बढ़ाता है। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि श्रीमत है। दुनिया के लोगों के पास श्रीमत नहीं है, मनमत है, परमत है, तो हर कर्म अफसोस वाला, हर कर्म करने के बाद रिग्रेट्स मन के अंदर रहती है, अफसोस रहता, अरे ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, इसके कहने पर नहीं चले होते तो अच्छा होता था, ये नहीं किया होता तो अच्छा, यही होता है ना। तो दुनिया के लोग मन मत और पर मत पर जब कर्म करते तो अफसोस है, और हम जब श्रीमत के आधार पर कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें क्या महसूस कराता है, खाली खुशी, लेकिन वो कर्म हमें कभी अफसोस करने नहीं देता है। हर कर्म हमारा आत्मसंतुष्टि का अनुभव कराता है, आत्मसंतुष्टि, है ना। इसीलिए कहा कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। जब श्रीमत पर कर्म करते तो मौजों का अनुभव करते हैं, उड़ती कला का अनुभव। और दुनिया के लोग मन मौजी है, हम मौजों का अनुभव करते, वो मन मौजी है। और मन मौजी हमेशा दुखी होते। फिर मन मत से कर्म, मन मौजी माना मन मत से कर्म करने वाला, पर मत से कर्म करने वाला, तो वो कैसा जीवन अनुभव करेंगे? वो मन मौजी वाला जीवन कैसा होगा? आज किसकी डांट खाएगा, कल किसकी डांट खाएगा, परसों किसकी डांट खाएगा? हाँ, ये कोई जीवन है तुम्हारा? मन मौजी होकर चल रहा, यही कहते हैं ना दुनिया के अंदर भी, कि बड़े बुजुर्ग भी उसको डांटते हैं, छोटे भी उसको डांटेंगे, माँ बाप भी उसको डांटते हैं, हर कोई उसको डांटता है क्योंकि मन मौजी है। लेकिन जो ईश्वरीय मौज का अनुभव करता है उसको कोई डांटेगा? उसका कर्म आत्मसंतुष्टि वाला है, जहां उनको पूर्ण संतोष है अंदर से। तो जैसे श्रीमत पर कर्म करता है तो तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, हमारे हर कर्म से दूसरे भी संतुष्ट, और भगवान की श्रीमत पर कर्म है तो भगवान भी संतुष्ट। तो तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं ना। दुनिया में लोग एक सर्टिफिकेट भी नहीं ले सकते, खुद का भी नहीं ले सकते, आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाते। और यहां बाबा की हमें कर्म योगी जीवन शैली कैसी है, जहां तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो तो वो जीवन कैसी होगी, कितनी तृप्ति वाली जीवन होगी, कितनी आंतरिक शांति वाली, संतुष्टि भरी जीवन है, भरपूरता वाली जीवन है कि नहीं? चौथी बात, कर्म योगी जीवन माना योग युक्त होकर के हर कर्म करने वाले। योग युक्त किसको कहा जाता है? योग युक्त माना दिव्य बुद्धि युक्त, दिव्य बुद्धि से कर्म करने वाले, अर्थात जिसको बाबा कहते तीनों कालों को, तीनों कालों को सामने रखते हुए कर्म करने वाले, कि भाई लॉन्ग रन में भी दीर्घ दृष्टि होकर के कर्म करते, तो लॉन्ग रन में भी न हमें नुकसान हो, न हमें कोई तकलीफ हो, न दूसरों को हमारे द्वारा तकलीफ हो। तीनों कालों को देखकर करते हैं तो सफलता सहज गले का हार बन जाती है, उसको कहते हैं योग युक्त होकर कर्म करने। जिस कर्म के अंदर बाबा की याद समाई हुई हो नेचुरल रूप से, उसको तो कहा दिव्य बुद्धि युक्त योग युक्त कर्म। जहां हमें कर्म करने के लिए कहीं झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है, लेकिन सच्चाई को भी इतना सुंदर तरीके से हम रख देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, विश्वास हो जाता है, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच बोलेंगे, है ना। तो कहने का भावार्थ कि अगर कोई बात ऊपर नीचे हो भी गई तो भी सत्य बोलने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, इसीलिए ऐसा हो गया, उसको कहते योग युक्त। जहां हमें कोई भी प्रकार का झूठ का, बनावटी का, दिखावटी का सहारा लेना नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई के सहारे पर चलते, इसलिए निरसंकल्प। ये नहीं कि एक झूठ बोला तो 100 झूठ बोलना पड़ेगा और उसी में बुद्धि चले, अभी फलाना आ गया उसके सामने मैंने ऐसे बोला, कितना कितना कॉम्प्लिकेशन है। याद रखना, एक बार झूठ बोला तो हर बार याद रखना पड़ता है, मैंने फलाने के सामने ये बोला था, उसके सामने ये बोला था, इसके साथ, अब मेरे से और कुछ कॉन्ट्रोवर्सी ना निकल जाए, कितना टेंशन होता है कि नहीं। उसके बदले सच बोल दो, तो कॉम्प्लिकेशन होगा, टेंशन होगा। सरलता, सहजता नेचर में आ जाए। दुनिया के अंदर एक झूठ को छिपाने के लिए, 100 झूठ बोलने के लिए कितनी बातें याद रखनी पड़ती है और कितना व्यर्थ चलाना पड़ता है कि हाँ भाई अभी ये बोलना पड़ेगा, अभी ऐसा बोलना पड़ेगा, अभी वैसा बोलना पड़ेगा, कितनी बातें याद रखनी पड़ती है। लास्ट में तो सामने आ ही जाना है, और जब सामने आ जाता है तो क्या इतना झूठ बोला था। कितना मैनेज करना पड़ता है, फिर उसको सारा फिर वो कहेंगे आप भगवान को मानने वाले हैं और ऐसा करते हैं, बाबा का नाम बाला हुआ या क्या किया आपने। तो उसको युक्ति युक्त नहीं कहा जाता, युक्ति युक्त, योग युक्त अर्थात सत्यता। अगर सत्यता को अपनाते हैं तो कभी भी आप फंसेंगे नहीं, है ना, कभी भी फंसेंगे नहीं। कई बार कई लोग कहते हैं, लेकिन जो बांधेली खास होती है ना, बड़ी युक्ति से चलती है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं ना फंसते हैं, लेकिन युक्ति से बोलते हैं, चलते हैं, है ना। तो कहने का भावार्थ यही है कि युक्ति से चलो, लेकिन सत्य को छोड़ो नहीं, जो आपको हर बार याद रखने की तकलीफ हो, है ना। तो बाबा हम बच्चों को यही सिखाता है कि आप मुरली के अंदर देखेंगे, बच्चे कर्म बंधन नहीं बनाना है, झूठ बोल करके अपने कर्म को हमें क्लियर करना है संगम युग में, या और कर्म बंधन बनाना है। अच्छा, जहां आप सच नहीं बोल पाते हैं, चुप रहो। सबसे अच्छी युक्ति क्या है? साइलेंस में रहो, है कि नहीं, मौन में रहो। और जब मौन में रहेंगे तो भी आप बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे, है कि नहीं। जहां आपको लगता है मौन धारण कर लो या एडमिट कर लो कि ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे। कभी कभी एक लाइन में बात पूरी हो जाती है, लेकिन झूठ बोलने से क्या होगा, हम अपने लिए ही इतनी बेड़ियां बनाते जाते हैं। इसलिए कभी सॉरी करके एक लाइन में खत्म कर दो बात, सॉरी हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे, ओम शांति, है ना। कितना सरल बाबा ने मार्ग दिया। क्या सॉरी करने से हम छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए अगर मान लो कि परिवार वालों ने जान भी लिया, कोई बात आप छिपाना चाहते थे पता चल गई, अब सॉरी कर लो उस वक्त, और सॉरी करके झुक जाओ तो क्या होगा, आगे बढ़ेगी बात। लेकिन अगर उसको छिपाने के लिए कोई झूठ का सहारा लिया तो मुझे 100 झूठ क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कितना बड़ा वो कर्म योगी बनने नहीं देगा, योग लगने नहीं देगा, हमारा योग नहीं लगने देगा। इसलिए बेहतर है कि मौन रहो और लास्ट में सॉरी कर दो, और सॉरी करके काम पूरा हो गया, सहज, है ना। तो इसीलिए 10 बातें बनाने के बजाय बेहतर है कि शांत रहो, उस आत्मा को आत्म रूप में देखो। दृष्टि हमारी मौन में कितनी ताकत है। अभी मैं गई थी सेवा पर, तो वहां एक बहन ने कहा लॉकडाउन में सत्य घटना बताई, कहा कि लॉकडाउन में हमारे पास में कोई आता तो नहीं था, सेंटर सब बंद था, तो नवरात्रि के दिन शुरू हो रहे थे, तो हम सब बहनों ने आपस में ये फाइनल किया कि 9 दिन मौन रहेंगे। जब बाहर की कोई सेवा नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, तो अच्छा है कि हम मौन रहे। तो कहा हम सभी बहनों ने मिलकर के ये संकल्प लिया कि हम 9 दिन का मौन भट्टी करेंगे, बाबा की याद में, कोई किसी से बात नहीं करेगा, हर एक अपना काम शांति से एकदम प्रेम से और मौन में रहकर साइलेंस में रहकर के करेंगे। तो कहा जब पहला दिन ही हुआ कि पहले दिन हुआ तो मकान मालिक आया। देखो परीक्षा तो माया लेगी ना, तो मकान मालिक आया और कहा मुझे पैसे की बहुत जरूरत है इसलिए मैं ये मकान बेच रहा हूं, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लो। पहला दिन ही हुआ मौन का और ये बात आई, सोचा चलो अब 9 दिन में तो कोई बेच देने वाला है नहीं। 9 दिन अपना बाबा का मौन है, हमने मौन रखा, सोचा बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए, हो सकता है ये मौन ही कोई चमत्कार कर दे। खैर उस समय वो तो बात नहीं आई दिमाग के अंदर, लेकिन सोचा 9 दिन के अंदर तो नहीं निकालने वाला है कि भाई इतना जल्दी। उसने एक महीने की मोहलत दी कि 1 महीने के अंदर आप खाली कर देना क्योंकि मैं मकान बेच रहा हूं। सोचा कि कोई बात नहीं, हम लोग मौन में रहेंगे। बोले फोन उठाया और खाली व्हाट्सएप में जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था उसको बता दिया लिख करके कि मकान मालिक ने 1 महीने की मोहलत दी है, ये मकान खाली करना है हमें 1 महीने के बाद, आप लोग सोच लो। कहा भी स्टूडेंट्स को तो मालूम था कि बहनें सभी मौन में हैं, सभी स्टूडेंट्स को मालूम था, तो स्टूडेंट्स ने आपस में मीटिंग किया कि भाई ये मकान जाने तो नहीं दे सकते हैं, इतना अच्छा हम सबके लिए इतना नजदीक है और फिर दूसरा मकान ढूंढेंगे पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो क्यों नहीं इसको खरीद ले हम लोग ही। तो आपस में मीटिंग किया, बहनों का तो मौन था तो बहनें तो अंदर आई नहीं, लेकिन आपस में ही इन लोगों ने मीटिंग किया, वो भी फोन द्वारा एक दूसरे से बात, क्योंकि इकट्ठा तो हो नहीं सकते थे, लॉकडाउन चल रहा था। तो कहा कि उस समय जो है सोचा कि चलो कितना हरेक कितना पैसा देगा करके एक दूसरे से पूछा तो आधा भी इकट्ठा नहीं हुआ, मकान का जो कीमत था आधा भी नहीं हुआ। तो सोचा अभी बहन जीवों का मौन छूटे फिर बैठेंगे आपस में मीटिंग करेंगे। अच्छा 9 दिन पूरा हुआ, 9 दिन के बाद बहन जी को कहा कि देखो हमने आपस में बातचीत किया है लेकिन आधा भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, अब आप बताओ। तो बहनों ने कहा ठीक है सभी हम लोग कल नहीं तो परसों जैसे आप लोग ठीक समझो तो हम मीटिंग करते हैं, आपस में बैठते हैं। कहा ठीक है, तो परसों का टाइम रखा, 1 दिन बीच में गैप था। तो उतने में एक माता ने फोन किया कि दीदी मैंने सुना ये मकान बेच रहे हो। तो कहा बेच नहीं रहे हैं, वो मकान मालिक बेच रहा है, उसने हमें 1 महीने की मोहलत दी है और 1 महीने में खाली करके दे देना है। तो बड़ी दुखी हो गई वो। फिर उसने जैसे ही फोन रखा तो उसका पति ज्ञान में नहीं चलता था, वो माता कभी कभी आती थी, तो पति ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ, इतना चेहरा क्यों तेरा बदल गया। तो उसने कहा बहनों का मकान जो है वो मकान मालिक बेच रहा है, अब बेच रहा है बहनें चली जाएंगी यहां से। तो कहा अच्छा, तो फिर उन लोगों ने क्या सोचा। तो बहन जी ने कहा कि भाई भाई बहनों ने आपस में बात किया है लेकिन आधा भी नहीं हो रहा है। तो माता ने सुनाया अपने पति को कि आधा भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब एक तो साधारण सब बाबा के बच्चे हैं तो आधा भी इकट्ठा नहीं हो रहा है और मकान की वैल्यू तो बहुत है। तो उसके पति ने कहा फोन लगाओ बहन को। बहन को फोन लगाया और कहा कितना कम पड़ रहा है। तो कहा आधा भी नहीं हुआ है हमारे पास। तो कहा फिर भी आप लोग, बोले कल मीटिंग रखा है तो कल मीटिंग में देखेंगे कितना होता है। कहा जितना भी होता हो भाई बहनों का भले, लेकिन बाकी का सारा पैसा मैं चुका दूंगा, यहां से आपको जाना नहीं। मौन का प्रभाव देखो, है ना। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, कल मीटिंग है, हम बात रखेंगे। और आप क्यों देना चाहते हैं? बहन जी ने ऐसे ही पूछ लिया उसको, आप तो कभी आते भी नहीं हैं, तो फिर कैसे आप इतना दे देंगे? तो उसने कहा, ये मुझे पता है मैं नहीं आता हूं, लेकिन मेरी वाइफ में जो मैंने चेंज देखा है, इतना परिवर्तन देखा है उसके जीवन में, ये कभी कभी जाती है लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतना परिवर्तन, उससे मैंने समझा कि ये संस्था बहुत अच्छी है और इसीलिए मैं बाकी का पैसा देना चाहता हूं। और सचमुच में तीसरे दिन में सारे भाई बहनों ने इकट्ठे होकर के, भाई आधा भी नहीं हुआ तो बाकी का पौना हिस्सा उस भाई ने अकेले, बाबा ने कहा ना कि जब आप साइलेंस या योग युक्त होकर के रहते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, असंभव भी संभव। ये प्रत्यक्ष स्वरूप अभी देखा कि देखो लॉकडाउन में भी किस तरह बाबा के सेंटर खुलते जा रहे हैं, है ना, खुलते जा रहे हैं, दूसरे लोगों का ठप होता जा रहा है और बाबा के घर बढ़ते जा रहे हैं। भावार्थ ये कि योग युक्त माना जितना बाबा की याद में रह करके हर कर्म करते हैं तो बाबा उसको बहुत सुंदर करके देगा। दूसरी बात, कर्म योगी बनना माना, पांचवी बात कर्म योगी बनना माना, हमेशा ये ध्यान में रहे, करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, तो देह अभिमान कभी उभरेगा नहीं। जब करण करावनहार बाबा है और बाबा करा रहा है तो खुद का अभिमान कभी उभरेगा, आएगा नहीं। और किस तरह से हर चीज इतनी सुव्यवस्थित हो जाएगी जो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि करण करावनहार अगर सर्वशक्तिमान है तो उसका हर कार्य कैसा होगा, परफेक्ट होगा ना, परफेक्ट होगा। तो उस कर्म के अंदर भी परफेक्शन एक नेचुरल रूप से आएगी, उसको कहते हैं कि कर्म योगी बनकर करना, जहां हर बात का श्रेय कहां जाता है, बाबा, बाबा करता है, बाबा कराता है, है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, दादी ने कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमेशा अपने आप को डिटैच रखा, बाबा कराने वाला है। मम्मा ने कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, हर घड़ी बाबा चलाने वाला है, बाबा कराने वाला है। ये है कर्म योगी जीवन। तो हर बात के लिए जिम्मेवार कौन? बाबा। जहां बाबा जिम्मेवार है तो वो तो परफेक्ट कर्म होगा या नहीं होगा, उस कर्म में कहीं त्रुटि हो सकती है, उस कर्म में कभी कोई त्रुटि आ नहीं सकती, उसको कहेंगे कि हां करण करावनहार करा रहा है। ये है कर्मयोगी। खुद लाइट रहो, फरिश्ता रहो, है ना। इसीलिए अभी हम कुछ दिन पहले ही भाई साहब के साथ बैठे थे, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी के साथ में, तो चिट चैट कर रहे थे बहने भाई साहब के साथ में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी गुह्य बात सुनाई और कहा कि अभी ब्राह्मण पने का पाठ समाप्त हुआ, ब्राह्मणों का पाठ समाप्त हुआ, तो कौन सा पाठ शुरू हुआ? अभी फरिश्ता का पाठ आरंभ हुआ है। हम ब्राह्मणों को अभी यहां ही फरिश्ता बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जो ब्राह्मण यहां फरिश्ता नहीं बना, ब्रह्मा बाबा भी यहां ही फरिश्ता बना था, मम्मा भी यहीं फरिश्ता बने थी, दादियां भी यहीं फरिश्ता बने थी, है ना। जो ब्राह्मण फरिश्ता नहीं बनता वो क्या करता है? संघर्ष, कहीं अपने संस्कारों के साथ संघर्ष कर रहा है, कहीं हालातों के साथ संघर्ष कर रहा है, कहीं परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष करना, युद्ध करने वाला कहां जाएगा? त्रेता में जाएगा। त्रेता माना क्षत्रिय। तो हमें कहां जाना है, सतयुग में या त्रेता युग में? हमेशा बाबा कहते, जब भी बाबा पूछे लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता बनना है, क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण कहेंगे कोई राम सीता बनना नहीं चाहता है। लेकिन अंत तक स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कहां जा रहा हूं। अगर सचमुच मैं यहां संघर्ष में रहा तो कहां जाऊंगा? इसलिए अब हर संघर्ष को फुल स्टॉप, जो बाबा ने कहा, व्यर्थ को भी बिंदी लगाओ, हर बात को बिंदी लगाना, जिसको आ जाए वही देवता घराने में जाएगा। जो हर बात में क्वेश्चन खड़ा करता रहता है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, और संघर्ष करता है, वो कहां जाएगा? है ना? तो क्वेश्चन करना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना ये समझदारी है। आसान फुल स्टॉप है, लेकिन क्वेश्चन मार्क टेढ़ा रास्ता है। तो टेढ़ा रास्ता कभी समझदारी का रास्ता नहीं होता है, लेकिन फुल स्टॉप ये समझदारी का रास्ता है, ये फरिश्ता बनने का रास्ता है। यही कर्मयोगी जीवन है, जहां सेकंड के अंदर फुल स्टॉप लगाया और आगे बढ़ो, लाइट रहो। क्यों क्या वाले बातों में जाओ ही नहीं, और हमेशा हर प्रकार के द्वंद से स्वयं को मुक्त रखो। तो कर्म योगी माना कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध युक्त, और समझदारी से चलने वाला, हर कर्म दूसरों को प्रेरणा देने वाला, साथ ही साथ योग युक्त होकर के कर्म करना, माना हर कर्म को यादगार बनाना, हर कर्म को यादगार बनाना। जिस तरह मम्मा के कर्म यादगार बन गए, है ना? जब लास्ट दिन मम्मा को बाबा ने कहा, मम्मा अंगूर बांटेंगे, सारी रात मम्मा सोई नहीं थी, इतना तकलीफ था मम्मा को, लेकिन फिर भी मम्मा ने कहा, जी बाबा, है ना? बहनों को लगा, मम्मा आप रेस्ट करो, हम लोग बांट के आएंगे, लेकिन मम्मा ने कहा, क्या बाबा को पता नहीं है? फिर भी अगर बाबा ने कहलवाया तो कोई तो भाव होगा बाबा का, और आकर के अंगूर बांटना शुरू कर दिया। 12 बजे तक मम्मा ने अंगूर बांटा और शाम को 4 बजे शरीर छोड़ा। तो कहा कि बाबा ने क्यों कहा था मम्मा को कि अंगूर बांटो? आज तक हर 24 जून माना अंगूर बटेगा, ये मम्मा का कर्म ऐसा यादगार बन गया यज्ञ इतिहास में कि आज तक भी वो कर्म चलता है। तो योगयुक्त होकर कर्म करना, माना हर कर्म यादगार बनाना, जिसको देखकर दूसरे भी फॉलो करें, उसको कहते हैं योगयुक्त कर्म। ये कर्मयोगी जीवन शैली है, जहां हमारा हर कर्म दिव्य बुद्धि युक्त हो, हर कर्म यादगार हो, हर कर्म किसी को प्रेरणा देने वाला हो, साथ ही साथ हर कर्म करने के साथ अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराए, खुद को भी और दूसरों को भी। हमारा कर्म दूसरे को कष्ट पहुंचाए ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कर्म से दूसरों को भी सुख मिले, उसी में हमारा सुख समाया हुआ है। हर कर्म करो तो जिसमें आनंद हो, है ना? उसको कहते हैं कर्मयोगी जीवन शैली। तो देखो ऐसी जीवन शैली है हमारी, ये है कर्मयोगी जीवन शैली। तो ऐसी जीवन शैली है हमारी, और जहां हमें ठीक करना है वहां जरूर क्या करें, ठीक कर ले। तो इसीलिए योगयुक्त, दिव्य बुद्धि युक्त, कर्म बंधन मुक्त और कर्म संबंध युक्त, ये है राजयोगी कर्मयोगी जीवन शैली। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर
बनेंगे। रहता और खुशी बांटता।
निर्मोही के तौर करेंगे,
निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे।
कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।